તારીખ 9/5/1996 શ્રી સમયસર કલષ્ટિકા શ્લોક નંબર 150 151 અને 152 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 85 મૂળ કેસેટમાં અવાજ ખરાબ છે.
સમયસર કલષ્ટિકા 150માં કલષ્ટિકા પાનું 140 हिंदी में लेना होगा. क्या कहते हैं, किसी दूसरे पदार्थ द्वारा दूसरे पदार्थ में कुछ भी किया नहीं जाता, क्योंकि जो कुछ वस्तु का जो स्वभाव है, जैसा स्वभाव है, वो अनादि निधन स्वभाव वैसा ही रहता है. यह वस्तु का वैसा ही रहता है जिस प्रकार शंख का श्वेत स्वभाव है. श्वेत प्रकट है, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि का शुद्ध परिणाम होता हुआ वो शुद्ध है. शुद्ध परिणाम होता हुआ वो शुद्ध है. यानी वस्तु सम्यक दृष्टि का जो परिणाम है वो किसी प्रकार के अनुकूल प्रतिकूल संयोग के कारण से अशुद्धता को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वो उसका स्वभाव है. वस्तु का स्वभाव अन्य वस्तु के किए किसी प्रकार दूसरे रूप करने को समर्थ नहीं है. कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ को अन्य प्रकार से परिणमन करा दें, ऐसी सामर्थ्य किसी भी पदार्थ में नहीं है. भावार्थ इस प्रकार है, इसका भावार्थ इस प्रकार है कि स्वभाव से श्वेत शंख है, स्वभाव से शंख श्वेत है. सो शंख काली मिट्टी खाता है, वो शंख क्या करता है, क्योंकि वो जीव है, दो इंद्रिय जीव है, वो चलता है, देखा है, चलता हुआ दिखता है, दिखाई पड़ता है. वो काली मिट्टी खाता है, उनको आहार होता है. पीली मिट्टी भी खाता है, या अनेक प्रकार के वर्ण वाली मिट्टी को वो खाता है. ऐसी मिट्टी खाता हुआ शंख उस मिट्टी के रंग का नहीं होता. अपने श्वेत रूप रहता है. अपने यहां मनुष्य में भी क्या होता है कि उड़द खाने से कोई काला नहीं हो जाता, और दूध पीने से कोई काला है वो सफेद नहीं होता. कोई सफेद वर्ण वाला हो वो उड़द खाने से काला नहीं हो जाता, और काला वर्ण वाला है उसको दूध पिलाओ सारी जिंदगी तो कोई सफेद नहीं होता. क्योंकि शरीर का जो स्वभाव है उस रूप परिणमन हो जाएगा परमाणु, वस्तु का ऐसा ही सहज है, सहज स्वभाव है ये वस्तु। उसी प्रकार वो तो दृष्टांत है, सम्यक दृष्टि जीव स्वभाव से राग द्वेष मोह से रहित शुद्ध परिणाम रूप है, स्वभाव से ही वो शुद्ध परिणमन करता है। सम्यक दृष्टि में शुद्धत्व परिणमन होना वो सम्यक दृष्टि का स्वभाव है। वह जीव नाना प्रकार भोग सामग्री भोगता है, पूर्व कर्म के उदय से अनेक प्रकार का संयोग भी होता है और उस संयोग का भोगवता भी उसको होता है, तथापि अपने शुद्ध परिणाम रूप परिणमता है। जो तो परिणमता है वो तो अपने शुद्ध परिणाम रूप परिणमता है। सामग्री के रहते हुए अशुद्ध रूप परिणमाया जाता नहीं, वो तो संयोग के कारण वो अशुद्ध परिणमन हो जाए उसका, ऐसा नहीं है। ऐसा वस्तु का स्वभाव है, वस्तु का ऐसा स्वभाव है। इसलिए सम्यक दृष्टि के कर्म का बंध नहीं है, कर्म का बंध तो नहीं है बल्कि निर्जरा है। क्यों निर्जरा होती है? तो वो सामग्री को भिन्न जानते हैं और सामग्री के प्रति के जो परिणाम हैं उनको भी भिन्न जानते हैं और भिन्न परिणमन करते हैं। भीतर में भिन्नता होगी तो प्रतिबंध नहीं है, बंध नहीं है। एकत्व होने से बंध होता है, भिन्नता होने से बंध नहीं होता है, ये कहने का तात्पर्य है। ये 150 कलश हुआ, अब 151 कलश। नानिन कर्मन जातु कर्तम उचितम किंचित तथापि उच्यते मुंशे हंतन जातु में यदि परम दुर्भुक्त वासिभो बंध स्यादुपभोग तो यदि न तत्किं कामचारोस्तिते नानं सनवसबन्धमेष्य परथा स्वस्य अपराधाद्ध्रुवं। खंडान्वय सहित अर्थ। नानी जातु कर्म कर्तुं न उचितम्। हे सम्यक दृष्टि जीव, किसी प्रकार कभी भी नानावरण आदि कर्म रूप उद्गल पिंड बांधने को योग्य नहीं है, यानी नया कर्म बांधने के लिए योग्य नहीं है। अंदर में भिन्न परिणमता है इसलिए योग्य नहीं है। तथापि किंचित उच्यते तो भी कुछ विशेष है वह कहते हैं। क्या कहा? कि जो ज्ञानी होते हैं वो तो कर्मबंध नहीं करते, तथापि ज्ञानी को भी कहाँ सावधानी रखने की होती है वो बात आचार्य महाराज उपदेश में करते हैं। अब ज्ञानी सम्यक दृष्टि को उपदेश देते हैं, ये उपदेश सम्यक दृष्टि को कहते हैं कि हे ज्ञानी ऐसा कहा ने, जो ऐसा जानकर भोग सामग्री कड़क वचन के द्वारा कहता है हंत हंत मैंने धिक्कार है, तो कड़क वचन हो गया, कठोर वचन हो गया। जो ऐसा जानकर भोग सामग्री को भोगता है कि मेरे कर्म का बंध नहीं है, ऐसा जानकर पंचेंद्रिय विषय भोगता है, तो ओहो जीव ऐसा जानकर भोगों का भोगना अच्छा नहीं है। कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मुझे तो बंद होने वाला नहीं है, इसलिए मैं मुझे भोग का कोई बंद होने वाला नहीं है, तो मैं भोग भोगूं। ऐसा जानकर अगर वो वांछा पूर्वक भोगता है तो उनके लिए बड़ा कठोर शब्द से कहता है कि वो तुमको उचित नहीं है। कारण के वस्तु स्वरूप इस प्रकार है कि जो ऐसा है कि भोग सामग्री को भोगते हुए नाना वर्णादि कर्म का बंध नहीं है, तो हो सम्यक दृष्टि जीव तेरे स्वेच्छाचरण क्या ऐसा है, अपितु ऐसा तो नहीं है। स्वेच्छाचरण मैंने स्वच्छंद से कोई सम्यक दृष्टि प्रवर्ते ऐसा आचरण करता है कि सम्यक दृष्टि तो ऐसा करेगा नहीं। भावार्थ इस प्रकार है कि सम्यक दृष्टि जीव के कर्म का बंध नहीं है। कारण के सम्यक दृष्टि जीव राग द्वेष मोह से रहित है, वो शुद्ध परिणमन करता है, इसलिए उसको कर्म का बंध नहीं होता। परंतु अब कहते हैं कि वही सम्यक दृष्टि जीव यदि सम्यक्त्व छूटे मिथ्यात्व परिणमे तो कब करेगा, मिथ्यात्व परिणमे और सम्यक्त्व छूट जाएगा तो सम्यक्त्व सहित तो उसको शुद्धत्व परिणमन होने से भिन्नत्व रहेगा, उसको कर्मबंध होगा नहीं। लेकिन अगर सम्यक्त्व छूट गया और मिथ्यात्व रूप परिणमन हुआ तो नाना वर्णादि कर्म बंध को अवश्य करेगा, तो फिर जैसा दूसरा मिथ्या दृष्टि बंधता है वैसा यह सम्यक दृष्टि से जो मिथ्या दृष्टि हुआ वो भी बंधेगा, क्योंकि मिथ्या दृष्टि होता हुआ राग द्वेष मोह रूप परिणमता है। मिथ्या दृष्टि होने से वो राग के साथ एकत्व कर लेता है, जो भिन्नत्व करता था वही एकत्व करने लग गया, वो एकत्व करने से उसको अवश्य कर्म का बंध होगा। यही आचार्य देव अपने शब्दों में कहते हैं, ज्ञानम सन वस सम्यक दृष्टि होता हुआ जितने काल प्रवर्तता है उतने काल बंध नहीं है। नानम सन वस, नानमा वो वास करता है, नानम सन नान रूप होता हुआ वास, वस मैंने निवास करता है, तब तक तो ज्ञान में रहता है, तब तक तो उसको बंध नहीं होता है। अपरथा स्वस्य अपराधात बंधम ध्रुवमीशी, अपरथा मैंने मिथ्या दृष्टि होता हुआ सम्यक दर्शन छूट गया और मिथ्या दृष्टि होता हुआ अपने ही दोषों से रागादि अशुद्ध रूप परिणमन के कारण खुद ही राग में एकत्व भाव से परिणमन करने का अपराध अपना है, स्वस्य अपराधात अपने अपराध के कारण से ज्ञानावरणादि कर्मबंध को तू ही अवश्य करता है, अगर मिथ्यात्व से छूट जाएगा तो अवश्य ज्ञानावरणादि कर्म से बंधेगा। अब क्या कहने का है कि सम्यक दृष्टि ज्ञान में रहता है तो निरस परिणाम से उनका उदय भाव और उदय क्रिया चलती है, लेकिन सम्यक तो छूटा तो इतना रस आएगा कि एकत्व परिणमन हो जाएगा रागादि से, उसमें उसको राग का निषेध आएगा नहीं, मिथ्यात्व होने से राग का निषेध नहीं आएगा और राग से भिन्न रूप भिन्नपना भी नहीं रहेगा। सम्यक्त्व होने से राग में एकत्व होगा नहीं, राग का रस नहीं होने से राग में एकत्व होगा नहीं, राग से भिन्नपना रहेगा तो बंधेगा नहीं, और सम्यक्त्व छूटने से इतना राग का रस हो जाएगा कि एकत्व हो जाएगा, तो वो अवश्य बंधेगा। सदा ज्ञान में कृपा हो जाता है। यदि ज्ञान में ज्ञान रूप अनुभव करने का पुरुषार्थ नहीं रहा तो सम्यक दृष्टि होने में पुरुषार्थ है, और सम्यक दृष्टि होने के बाद सम्यक्त्व में रहने में इससे भी ज्यादा पुरुषार्थ है। जो होने में पुरुषार्थ है इससे ज्यादा रहने में पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ वेग चलता है, भिन्नपना चलता है, भेद ज्ञान धारावाही चलता है, तो बंद नहीं होता। पुरुषार्थ छूट गया, मिथ्या तो हो गया, तो अवश्य कर्म से बंधेगा। तात्पर्य वो है कि क्रिया से बंध नहीं है, उदय भाव और उदय की क्रिया से बंध नहीं है, अपने एकत्व परिणम से बंध है और भिन्नत्व परिणम से बंध का अभाव है। बस बात वहां ले जानी है कि परिणाम से बंध होता है, परिणाम में बंध। कृपालु ने कहा ना, परिणाम में बंध। उस तरह से 151 कलश में सम्यक दृष्टि को उपदेश दिया है कि तीव्र रस से अगर परिणमन करेगा तो सम्यक्त्व छूटेगा और तू बंधेगा। अब 152 कलश, कर्तारं स्वफलेन यत्किल बलात् कर्मेव नो योजयेत् कुर्वाण फल लिप्सुरेव हि फलं प्राप्नोति यत्कर्मणः। नानं संस्तदपाश्च रागरचनो नो बध्यते कर्मणा कुर्वाणोऽपि कर्म तत्फलपरे त्यागै एकशिलो मुनि। मुनि मैंने यह सम्यक दृष्टि लेना, मुनि मैंने सम्यक दृष्टियों के अधिकार सम्यक दृष्टि का चलता है। तद मुनि कर्मणो नो बध्यते, नीचे से टीका शुरू करे से छेला चरण से। तद मुनि कर्मणो नो बध्यते, इस कारण से शुद्ध स्वरूप अनुभव विराजमान सम्यक दृष्टि जीव, ये मुनि का अर्थ क्या है? मुनि शब्द का अर्थ क्या किया? सम्यक दृष्टि किया। ये मुनि शब्द का प्रयोग किया है ना आचार्य महाराज ने। कई लोग ऐसा समझ लेते कि ये अधिकार मुनि नहीं, मुनि के लिए है, सम्यक दृष्टि का ये अधिकार नहीं है, मुनि नहीं बनता है, सम्यक दृष्टि को बंध हो जाता है, ऐसा करके लेते हैं। जो गुणस्थान को नहीं समझते वो लोग। राजमल जी ने तो स्पष्ट अर्थ किया है मुनि का के तीस कारण से शुद्ध स्वरूप अनुभव विराजमान सम्यक दृष्टि जीव। सीधा अर्थ नहीं किया सम्यक दृष्टि जीव। सम्यक दृष्टि जीव कैसा होता है के शुद्ध स्वरूप के अनुभव में विराजमान होता है वो सम्यक दृष्टि जीव। नाना वर्णादि कर्म से नहीं बंधता है, नो बध्यते कर्मणा नो बध्यते। नाना वर्णादि आठों प्रकार के कर्म से वो बंधता नहीं है। कैसा है सम्यक दृष्टि जीव? क्योंकि अविरत सम्यक दृष्टि ने है तो कैसा है कि ही कर्म कुर्वाण अपि निश्चय से कर्मजनित विषय सामग्री भोग रूप क्रिया को करता है, यद्यपि भोगता है, करता भी है, यद्यपि भोगता भी है, तो भी तत्फल परित्याग एक शिलह कर्मजनित सामग्री में आत्मबुद्धि जानकर रंजक परिणाम का सर्वथा प्रकार स्वीकार छूट गया है, छूट गया ऐसा है। शब्दार्थ तो मामूली है, शब्दार्थ से तत्फल इसलिए कर्म का फल, उसका परित्याग, उसका सर्वथा प्रकार त्याग कर दिया है, ऐसा जिसका स्वभाव है, कितना अर्थ होता है। शब्द का अर्थ तो उतना ही होता है, तो तत्फल का अर्थ क्या किया है? कि कर्मजनित सामग्री वो कर्म का फल है। आत्मबुद्धि जानकर रंजक परिणाम का सर्वथा प्रकार स्वीकार मैंने त्याग हो गया है, स्वीकार छूट गया, मैंने त्याग हो गया है। कर्म का फल तो आया, वो कर्मजनित सामग्री, क्योंकि उस क्यों इसका त्याग क्यों माने? जब वो कर्मजनित सामग्री में कुछ करता भी है और भोगता भी है, जैसे व्यापार करता है, पैसा कमाता है और उस पैसों से सामग्री खरीद कर उसका भोग भी करता है, तो करता भी है और भोगता है, भोगता भी है। लेकिन क्या बात है कि वो सामग्री में आत्मबुद्धि जानकर ये चीज मेरी है ऐसा जानता नहीं, ऐसा स्वीकार होता नहीं। ऐसा स्वीकार नहीं करता तो फिर क्यों करता है? तो करता नहीं है, हो जाता है। क्या है? करता नहीं है, हो जाता है, फिर भी आत्मबुद्धि नहीं होती है। और आत्मबुद्धि नहीं होने से परिणाम में रंजक नहीं होता है, वो रंजायमान नहीं हो जाता। अच्छा हुआ मुझे ये चीज मिल गई, ऐसा उनको रंजक परिणाम होता नहीं है। चीज मुझे मिलती नहीं, वो उदय के कारण से आई और उदय के कारण से जाएगी, मेरे को कुछ लेना देना नहीं है, न मेरे में कुछ आया न मेरे से कुछ गया। तो मुमुक्षु की भूमिका में प्रयोग किया है कि मेरे में कुछ आता जाता नहीं है, ऐसा प्रयोग तो मुमुक्षु की भूमिका में कर लेता है। तो कहते हैं कि आत्मबुद्धि जानकर रंजक परिणाम का सर्वथा प्रकार स्वीकार छूट गया है, रंजक परिणाम का स्वीकार उसको होता नहीं है, भिन्नपणा हो जाता है। छूट गया है सुख रूप स्वभाव जिसका ऐसा है, और अपना आत्मा में से सुख है ऐसा अनुभव करने का जिसका स्वभाव है, स्वभाव सुख को अनुभव करता है, सामग्री के सुख को अनुभव नहीं करता है। भावार्थ इस प्रकार है कि सम्यक दृष्टि जीव के विभाव रूप मिथ्यात्व परिणाम मिट गया है। सही बात तो वो है कि उनका मिथ्यात्व का परिणाम तो मिट गया है, तो उसके मिटने से, मिथ्यात्व परिणाम को मिटने से अनाकुलत्व लक्षण अतीन्द्रिय सुख अनुभव गोचर हुआ है। मिथ्यात्व परिणाम मिटने से अंदर का आत्मा में जो सुख है, जिसका स्वरूप जिसका लक्षण अनाकुलता है, ऐसा सुख का अनुभव खुद करता है। अतीन्द्रिय सुख अनुभव गोचर हुआ है उसको, और पर पदार्थ के प्रति जो परिणाम अंश जाता है उसमें आकुलता का अनुभव करता है। एक साथ दो बात है, जो परिणाम अंश अंदर में स्वरूप का अनुभव करता है वहाँ सुख होता है, और कुछ अंश परद्रव्य के प्रति जाता है उदय भाव में, वहाँ दुख का अनुभव करता है। अब देखिए कि उसको क्या अच्छा लगेगा, सुख अच्छा लगेगा कि दुख अच्छा लगेगा, कि उनको अपना स्वभाव सुख अच्छा लगेगा, विभाव का दुख अच्छा लगेगा? नहीं, मिथ्या दृष्टि को तो विभाव का दुख लगता नहीं है, और उसमें कल्पना है सुख की, तो सुखाभास रूप दुख को सच्चा सुख मान करके परिणाम में रंजायमान हो जाता है। ऐसा भ्रम, ऐसा मिथ्या भाव सम्यक दृष्टि को होता नहीं है, ये बात है।
एक ही समय में दो पर्याय बनने के एक ही पर्याय,
पर्याय एक है, उसमें भाव दो है। क्या है? एक पर्याय में भाव दो है, कुछ अंश स्वभाव रूप है, कुछ अंश विभाव रूप है। जो पूरा स्वभाव हो गया तो साधकपना नहीं रहेगा, सिद्धपना हो जाएगा, और स्वभाव अंश बिल्कुल नहीं है, पूरा विभाव है, तो मिथ्या हो जाएगा। साधक को तो दो भाव होता ही है, मिश्र धर्म होता है, परिणाम में मिश्र धर्म होता है हमेशा। दीपचंद जी ने अनुभव प्रकाश में वो प्रकरण लिखा है, मिश्र धर्म अधिकार, ऐसा करके प्रकरण लिखा है, और समय सार में तो वो बात प्रसिद्ध है। स्वरूप में मर्यादा का अर्थ वो है कि जो विभाव अंश है वो विभाव अंश में अपनत्व नहीं होता, एकत्व नहीं होता, सुख बुद्धि नहीं होती, कर्ता बुद्धि नहीं होती, भोक्ता बुद्धि नहीं होती, और भिन्नत्व रहता है, और आकुलता को आकुलता रूप में भिन्न जानकर विदन करता है। ऐसी बात है, उसके नाम मर्यादा। साथ में रहता है, अभिप्राय साथ में नहीं होता है, ऐसा परिणाम हो सकता है, श्रद्धा नहीं हो सकती है, लेकिन परिणाम हो सकता है। वो तो सब चर्चा किया है, समय सार में वो सब चर्चा किया है, कैसा होता है। और कैसा है कि ज्ञानम सन तद अपास्त राग रचना, ज्ञानमय होते हुए क्या है सम्यक दृष्टि का परिणमन, ज्ञानमयपना है, ऐसा परिणमन रहने से ज्ञानमय होते हुए दूर किया है राग भाव जिसमें से ऐसा है, राग भाव दूर कर दिया ऐसा है, दूर हो गया, राग भाव है सही लेकिन दूर हो गया। जैसे कोई प्रसंग वशात पड़ोस वालों की कोई चीज ले आते हैं, मेहमान आते हैं ना तो बर्तन लेता है, ले आते हैं दरी, ले आते हैं कुछ न कुछ ले आते हैं ना, और उसका उपभोग करते हैं कि नहीं करते हैं, उसको काम में लेना है तब तो ले आए हैं। अब वो चीज उसको अपनी दिखती है या पराई दिखती है, कैसे दिखती है? अरे शादी वगैरह हो तो जेवर भी ले आवे, आभूषण भी ले आवे, कपड़े भी ले आवे, पहने भी, हार ले आवे, नेकलेस और पहने, और कांच में देखे मुझे कैसा सुंदर लगता है, लगता है तो सुंदर, बहुत बढ़िया चीज है, अच्छा लगता है पहनने से, राजी भी होता है, लेकिन वो हार को अपना जानता नहीं है, मालूम है कि कल वापस कर देने का है, और बोलेगा कि देखो भाई पराई चीज है, संभाल के रखना, अपनी चीज गंवा दे उसका कोई हरक शोक नहीं, लेकिन पराई चीज को गंवाना वो बात बराबर नहीं है, क्योंकि शंका का कारण हो जाए। तो जतन करेगा अपनी चीज से ज्यादा, कितना जतन करेगा, अपनी चीज से ज्यादा जतन करेगा, लेकिन अपनत्व बिल्कुल करेगा नहीं, होता है कि नहीं होता है, दिखाओ कैसा है, बहुत सावधानी है, बहुत जतन करता है, अंदर में बिल्कुल अपनापन नहीं है। इस तरह से ज्ञानमय होते हुए दूर किया है राग भाव, अंदर में से दूर कर दिया राग भाव को, है इसकी पर्याय में, लेकिन दूर किया है, जिसमें से ऐसा है। इस कारण कर्मजनित है जो चार गति की पर्याय, दृष्टि चारों गति में पैदा होता है, वो चारों गति कर्मजनित है, तथा पंचेंद्रियों के भोग, चारों गति में जो जो प्रकार के पंचेंद्रियों के भोग होते हैं, नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष सुख रूप अनुभव में आता है। सम्यक दृष्टि जीव ऐसा ही अनुभव करता है, विभाव में दुख का ही अनुभव करता है, उसको सुख की कल्पना बिल्कुल होती नहीं है। इस प्रकार, इस कारण जितना कुछ साता असाता रूप कर्म का उदय दोनों प्रकार का आता है, कभी साता का कभी असाता का, उससे जो कुछ इष्ट विषय रूप तथा अनिष्ट विषय रूप सामग्री उदय के अनुसार, तो सम्यक दृष्टि के सर्व अनिष्ट रूप है, इष्ट सामग्री भी अनिष्ट है और अनिष्ट सामग्री भी अनिष्ट है। सामग्री तो जो है सो है, वो तो निरूप है, लेकिन उनके प्रति जो परिणाम अंश जाता है वो अनिष्ट है, इसलिए सामग्री को अनिष्ट कहते हैं। सामग्री इष्ट भी नहीं, सामग्री अनिष्ट भी नहीं, वो तो ज्ञान का ज्ञेय है, लेकिन कहने में ऐसा आता है। तो जो परिणाम सामग्री के प्रति जाता है उतना अंश अनिष्ट है, उतना अंश दुखदायक है, इसलिए अनिष्ट है। इसलिए जिस प्रकार किसी जीव के अशुभ कर्म के उदय रोग शोक दारिद्र आदि होता है, आप बहुत सरस दृष्टांत आए पता, बहुत अच्छा दृष्टांत दिया है कि जिस प्रकार किसी जीव के अनुभव अशुभ कर्म के उदय से रोग आता है, शोक होता है, दारिद्र होता है, उस जीव छोड़ने को बहुत ही करता है, उनको अच्छा नहीं लगता, रोग होता है दारिद्र होता है तो अच्छा नहीं लगता, छोड़ने को बहुत ही करता है, इस परिस्थिति छोड़ाने के लिए प्रयत्न करता है, भाव करता है, परंतु अशुभ कर्म के उदय नहीं छूटता है, इसलिए भोगना ही पड़े, रोग आवे भोगना ही पड़े, दरिद्रता आवे भोगना ही पड़े, उस प्रकार सम्यक दृष्टि जीव के पूर्व में अज्ञान परिणाम के द्वारा, पूर्व में ज्ञान परिणाम के द्वारा बांधा है जो साता असाता रूप कर्म, उसके उदय अनेक प्रकार विषय सामग्री होती है। ज्ञान भाव में, ज्ञान दशा में जो भाव हुए उनसे कर्म बंधे, उनका फल आया, पहले ज्ञान दशा में फल आया, उसे सम्यक दृष्टि जीव दुख रूप अनुभवता है, उनको सुख नहीं मानता, साता के हो या असाता के, छोड़ने को बहुत ही करता है, उनको अच्छा नहीं लगता, छूटे तो ठीक है, उनको पूर्ण वितराग होना है तो सामग्री को छोड़ने को बहुत ही करता है। परंतु जब तक सपक श्रेणी चढ़े तब तक छूटना अशक्य है। मुनि दशा अंगीकार करें और क्षपक श्रेणी चढ़े तब सब कर्म खिलने लग जाए, क्षय होने लग जाए, उसके पहले वो कर्म का फल आए बिना रहेगा। मुनि को भी रोग हो जाता है, भयंकर रोग में आ जाए, लेकिन क्षपक श्रेणी चढ़े, अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो जाए, सब बात खत्म, फिर कोई बात रहने वाली नहीं है। रोग से शरीर कुरूप हो गया हो, सनत कुमार चक्रवर्ती ने गलत कोट किया था ना, कुरूप हो जाए, एकदम कुरूप हो जाए, लेकिन क्षपक श्रेणी चढ़े और केवल ज्ञान हो जाए, पूरा शरीर परम औदारिक परमाणु का अर्यंत का हो जाए, पूरा शकल बदल जाए, सभी अर्यंतों की एक सी शकल होती है, मुख मुद्रा में कोई फर्क नहीं। छद्मष्ट अवस्था में मनुष्य को एक दूसरे का जो मुखाकृति है वो अलग अलग हेतु होती है और इस तरह से वो पहचाना जाता है। अगर एक से हो तो पहचानना आसान नहीं है, भले एक सा दिखे लेकिन एक सा होता नहीं। जैसे वो चीन में लोग अपन लगते हैं सब चाइना एक सरका चाइना होता है, नहीं, जापान में देखते हैं कि वे एक जापानीज लोग सब एक सरीके होते हैं, ऐसा नहीं होता, भिन्न अलग अलगपना होता है, वो एक दूसरे को पहचानते हैं बराबर कि क्या 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 अलगपना होता है वो। लेकिन केवल ज्ञान होने से सुंदर पूरा शरीर सुंदर हो जाता है, मुख भी सुंदर हो जाता है, और न बाल अवस्था रहती है, न युवा अवस्था रहती है, न वृद्धावस्था दिखती है। क्या बचपन में कोई को केवल ज्ञान होता है 8 साल की उम्र में, किसी को वृद्धावस्था में हो जाए या किसी को युवा अवस्था में हो जाए, कुछ नहीं दिखे। बाल वृद्ध युवान पना तीनों में से एक भी आप बोल सकते नहीं कि आप कैसा है। वो देखो प्रतिमा जी को देख सकते हैं, युवान बता सकते हैं, वृद्ध बता सकते हैं, नहीं दिखे, सबका एक सरीखा मुखाकृति हो जाए। लेकिन क्षपक श्रेणी नहीं चढ़े इसके पहले तो शुभाशुभ कर्म का उदय मुनि अवस्था में भी आता है, इसलिए परवश हुआ भोगता है रोग दारिद्र आता है, पाप का उदय उसको परवश रूप से भोगता है, और पुण्य का उदय आता है तो भी परवश रूप से भोगता है। हृदय में अत्यंत विरक्त है, देखो ये अंडरलाइन करने जैसी बात, अंदर में एकदम विरक्त है, कोई रस नहीं आता है, इसलिए अरंजक है, उसका परिणाम रंगा तो नहीं, परिणाम को रंग चढ़ता नहीं है, रंजायमान नहीं होता, अंदर से विरक्त हो गया, रस नहीं है, इसलिए भोग सामग्री को भोगते हुए कर्म का बंध नहीं है, निर्जरा है, क्योंकि वो तो कर्म खिर जाएगा, नया बंध देगा नहीं। यहाँ दृष्टांत कहते हैं, आचार्य महाराज स्वयं दृष्टांत कहते हैं कि यत्किल कर्म कर्तारम स्वफलेन बलात् योजयेत, जिस कारण से ऐसा है ऐसा ही है संदेह नहीं। देखो क्या जोर से कहा, ऐसा ही है संदेह नहीं है कि राजा की सेवा आदि से लेकर जितनी कर्म भूमि संबंधी क्रिया क्रिया में रंजक होकर तन्मय होकर करता है जो कोई पुरुष, उसको जिस प्रकार राजा की सेवा करते हुए द्रव्य की प्राप्ति, भूमि की प्राप्ति, जैसे खेती करते हुए अन्न की प्राप्ति अवश्य कर कर्ता पुरुष का क्रिया के फल के साथ संयोग होता है, भावार्थ इस प्रकार है कि जो क्रिया को नहीं करता उसको क्रिया के फल की प्राप्ति नहीं होती है। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव को बंद नहीं होता, निर्जरा होती है। क्या कहा कि जो खरेखर कर्म का कर्ता होकर के कर्म करता है उनको तो फल भोगना पड़ता है, लेकिन जो जिसको कर्तापना नहीं रहा ऐसा सम्यक दृष्टि, इसको फल का भोगना कहने मात्र है, वो वास्तव में फल को भोगता नहीं है, न कर्म को करता है न कर्म फल को भोगता है। कारण कि सम्यक दृष्टि जीव भोग सामग्री क्रिया का करता नहीं है, करता होकर के वो परिणाम नहीं करता, इसलिए क्रिया का फल नहीं है। कर्म का बंध जो है वो तो सम्यक दृष्टि को क्रिया का फल नहीं है। तो जो कर्ता होकर के करता है उसको भोगने का अवश्यपना भोक्ता भाव रहता है, कर्ता भाव छूट गया तो भोक्ता भाव भी छूट गया। मिथ्या अभिप्राय छूट गया, कर्ता बुद्धि भोक्ता बुद्धि एकता बुद्धि सुख बुद्धि आधार बुद्धि ये सब अभिप्राय छूट गया। वो तो वेदना से लेकर के जितने स्टेज में आए ना वो अभिप्राय छोड़ता गया और ढीला करता गया, अभिप्राय छोड़ता गया और ढीला करता गया, बस। दृष्टांत से दृढ़ करते हैं कि जिस कारण से पूर्वोक्त प्रकार नाना प्रकार की पूर्वोक्त नाना प्रकार की क्रिया कोई करता हुआ फल की अभिलाषा करके क्रिया को करता है, ऐसा कोई पुरुष क्रिया के फल को प्राप्त होता है। जिसको फल की अभिलाषा होती है उसको भोक्तापना अवश्य है, तो उसको फल मिलता है। भावार्थ इस प्रकार है कि जो कोई पुरुष क्रिया करता है निरभिलाष होकर करता है, क्रिया होती है अभिलाषा सुख दुख की नहीं है उसमें, उसको तो क्रिया का फल भी नहीं है। तो क्रिया का फल जो बंद है वो उसको नहीं है, बंद नहीं है तो निर्जरा तो है ही है। इस प्रकार सम्यक दृष्टि जीव को क्रिया का कर्तापना भी नहीं है और भोक्तापना भी नहीं है। देखो अधिकार बंद का चल निर्जरा का चलता है और कर्तापना भोक्तापने का मुख्य दृष्टिकोण से बात चल रही है। सम्यक दृष्टि की निर्जरा है तो क्यों निर्जरा है कि कर्ता भोक्तापना नहीं है इसलिए निर्जरा है। तो जो बात कर्ता कर्म अधिकार में किया था वही दृष्टिकोण सभी अधिकार में आचार्य महाराज ने रखा है।